SBS हिंदी।
दोस्तों SBS हिंदी पर आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसी युवा प्रतिभा के साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज पर काम कर रहा है और इसी क्षेत्र में कार्यरत है यूनेस्को, और हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व की ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में काम करने वाले युवाओं के लिए एक विशेष प्रकार के वर्कशॉप का आयोजन किया गया था पेरिस में। तो चलिए जानते हैं क्या खास बात रही और इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं मादिश परिख, जो एक युवा नेता है, बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत है और एक्सिलियर फाउंडेशन के प्रमुख भी हैं। मादिश, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
जी नमस्कार मैडम। सो वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर्स एक यूनेस्को का इनिशिएटिव है जहां वो लोग युवाओं को जोड़ते हैं हेरिटेज कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में, और कैसे उनको समाज में एक्टिव बनाया जाए, बिकॉज आज एक हेरिटेज की भी बड़ी क्राइसिस है। वो मानते हैं कि युवा ही वो फ्यूचर है जो हेरिटेज साइट्स और जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है उनको सस्टेनेबल बनाएंगे आगे की जनरेशन के लिए। तो 11 साल से ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर इनिशिएटिव चलता है जहाँ देश विदेश में अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे युवाओं के लिए वर्क कैंप्स होते हैं जहाँ पे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। 10 डे का प्रोग्राम मॉड्यूल है जहाँ अलग अलग एक्टिविटीज से लोकल कम्युनिटी और ग्लोबली कैसे वो हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करेंगे और उसका एक लाउड मैसेज वो शेयर करते हैं।
मादेश, आप बताइए कि ये तो पूरे विश्व के युवा वहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो कौन कौन से देशों से कितने युवा थे और क्या खास बात रही इस वर्कशॉप की?
ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज किया था यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में, तो वहाँ उन्होंने उनके 46 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें से उन्होंने 18 टीम लीडर्स को सिलेक्ट किया था इन ऑर्गेनाइजेशन से, और वो मेजरली फोकस कर रहा था कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप के, वो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। जैसे कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा कर रही है, उनकी कुछ स्ट्रेंथ है, उन्होंने कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन फिगर आउट किए जिनकी कुछ वीकनेसेस थी बिकॉज ऑफ सर्टन ज्योग्राफिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, तो कैसे इन सभी को एक साथ बुलाया जाए, उनका एक नेक्सस बनाया जाए और सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और कैसे इनकी कैपेसिटी बिल्ड करें इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। फिर कुछ गवर्नमेंट लायजमेंट प्रॉब्लम्स भी होते हैं उनके कंट्रीज में, तो कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक इफेक्टिव वे में ये प्रोग्राम्स को और अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। और उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो वो उनके हेड है इनेस यूसवी जी, सो शी चेयर्ड द एंटायर दिस थिंग, द वर्कशॉप, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप।
ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप से जान में आया है कि आप भारत की एकमात्र संस्था थी जिसको इस पूरे वर्कशॉप में आमंत्रित किया गया था, तो आप बताइए कि एक्सिलियर फाउंडेशन जो हमारी वैश्विक धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसके लिए किस तरह के कार्य करती है?
जी, एलिजिबल फाउंडेशन का जर्नी जो है वो 2017 से हमने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से शुरू किया था जो गुजरात में है, रानी की वाव पाटन में है। उसके बाद 2018 में हम और 4 साइट्स पे काम कर रहे हैं यूनेस्को के साथ, जो है रानी की वाव पाटन गुजरात में, चापानेर पावागढ़ पार्क आर्कियोलॉजिकल जो गुजरात में है, फिर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में, और अहमदाबाद जो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तो ये जो 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वहाँ पे एक 10 डे का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे तकरीबन 600 से ज्यादा यूथ अप्लाई करते हैं, और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसमें से अराउंड 25 यूथ सिलेक्ट होते हैं, और ये जो 10 डे प्रोग्राम फॉर्मेट है वहाँ पे वो लोग आते हैं, वहाँ पे हेरिटेज कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सेंसिटाइज किया जाता है हेरिटेज क्या होता है, बिकॉज हर कोई अलग अलग फील्ड से आता है, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो पहले उनमें वो रुचि डेवलप की जाती है कि हेरिटेज के लिए क्यों काम करना है, कितना इम्पोर्टेंस है, क्या उसका हिस्टोरिकल वैल्यू है। जैसे हम देखते हैं तो कोई देश होता है उसका एक इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, इकोनॉमिक्स होता है पूरा, तो वैसे इसका हिस्टोरिकल वैल्यू भी होता है। तो देन हम उनको टेक्निकल एस्पेक्ट सिखाते हैं, कैसे हेरिटेज साइट्स की मेंटेनेंस की जाती है, कैसे उसको साफ किया जाता है, वी एंगेज देम इन हेरिटेज वॉक्स होते हैं, कल्चरल इवनिंग जो भी है, जो अपने देशों से या फिर स्टेट से आते हैं, उधर का कल्चर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उधर का कोई एक हेरिटेज सिंबलाइज किया जाए वैसा वो पर्टिकुलर आइटम लेके आते हैं, जैसे माँ का बनाया हुआ अचार हो सकता है, अगर गुजरात से आते हैं तो दूसरे कोई स्टेट से आते हैं तो वैसा वो सिम्बॉलिक आइटम लेके आते हैं। देन फिर हम ज्यादा फोकस करते हैं कि कैसे रिसोर्स जनरेट होता है ये हेरिटेज कैंप से। तो हम कुछ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें हम ये जो डेलीगेट्स आते हैं उनके अलावा हम लोकल कम्युनिटी का कैसे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट किया जाए उस पर फोकस करते हैं। जैसे हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया वो लॉन्च करते हैं, तो जहाँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट वगैरह आते हैं और वो हेरिटेज साइट के ऊपर लाइव पेंटिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। तो ये जो पेंटिंग हो गए, फिर वैसे फोटो कॉम्पिटिशन करते हैं, ऐसे हम रिसोर्स जनरेट करते हैं। ऑल्सो हमारा एक लोकल कम्युनिटी डायलॉग होता है जहाँ पे ये जो डेलीगेट्स आते हैं वो लोकल कम्युनिटी के साथ डायलॉग करते हैं और ऐसी फैक्ट्स बाहर आती है जिससे जो कहीं ऑनलाइन रिसोर्सेज पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना, यूनेस्को तक पहुँचाना, ये सारे एफर्ट्स लगते हैं वो 10 दिन के प्रोग्राम।
बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि चार अलग अलग जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप। अगर वैश्विक स्तर पर वापस हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स मौजूद हैं। तो आप बताइए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संबंध है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, अगर हम हेरिटेज देखें तो हर एक छोटे से छोटे शहर या बड़े से बड़े देश के साथ कोई ना कोई हेरिटेज लिंक होता है, बिकॉज वो हमारी आइडेंटिटी होती है, वो दिखाती है कि हम कहाँ से आते हैं, डायरेक्टली लिंक्स टू आवर पास्ट। तो अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो इंडिया में गुजरात के पास सापुतारा है, तो उधर का जो रॉक कार्विंग या हेरिटेज है दैट इज वेरी सिमिलर टू दी आर्ट ऑफ क्रिएटेड बाय दी एबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो काफी सिमिलरिटी है इसमें। सो मतलब वहाँ के युवा और इंडिया के युवा को हम लिंक करके एक एक्सचेंज प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या फिर जो सरकार है उनसे बात करके, और एक अच्छा हेल्दी डायलॉग हो सकता है बाय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, और उनको एंगेज किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हाउ दे वर वेरी सिमिलर, क्या एक्सचेंज रहा होगा, वेदर पीपल माइट हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए होंगे। सो बहुत चीजें अनर्थ हो सकती है ये समझने से
और हम भी आशा करते हैं कि दोनों देशों की इस हेरिटेज को, धरोहर को ज्यादा युवाओं के साथ जोड़ा जाए, उसी हिसाब से दोनों देश के जो सरकार है वहां से प्रयास होंगे। मादिश, आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे लिए समय निकाला एसपी हिंदी से बात करने के लिए। मैं हरिता आपका धन्यवाद करती हूँ।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।